ahora yo tampoco daré una estatua, y dije, Satyadana, que Drabuka Lakshan kya hai? Ek to Drabuka Lakshan bana chuke the ki Utpad Vay Dhrav Yuk Kan Sat, Sat Drav Lakshan. Utpad Vay Dhrav Se Yuk Sat hai, और सत ही द्रव्य का लक्षण है, यानी एक तरह से उत्पाद वे द्रव्य जिसमें है वही द्रव्य है। द्रव्य पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। पर्याय नष्ट होती है, पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन इसके बाद भी उसमें कुछ है जो कि रहा आता है। ये हर एक द्रव्य का स्वभाव है, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं इंडिविजुअलिटी विद परमानेंट नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब वे कह रहे हैं कि द्रव्य का दूसरा लक्षण ही बनाया जा सकता है, तो दूसरा लक्षण यहाँ बना रहे हैं कि गुण पर्यावरक द्रव्य, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन होता है वो द्रव्य से भिन्न तो होता नहीं, तो उसके परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं, तो वो पर्याय भी उसमें है और सदा जो द्रव्य के साथ रहा आता है उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है। हाँ, वो उसका स्वभाव कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, गुण कह लीजिएगा, तो गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य होता है। कभी भी पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं कहीं प्राप्त होती है, वो परिवर्तित जरूर होती है, लेकिन गुण के साथ ये है कि वो हमेशा द्रव्य के साथ बना रहता है। अच्छा, और एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुणों में नहीं जाते हैं, इस तरह की भी आगे चर्चा कहेंगे वो। अब छह द्रव्यों की चर्चा क्योंकि करनी चाहिए, पर पंचास्थी काय और अजीब काय इस तरह की चर्चा से इसकी शुरुआत की गई थी, तो वहाँ पर धर्म अधर्म आकाश और जीव काल को छोड़ दिया था वहाँ पर। तो अब उसके लिए यहाँ आकर के उसको कह रहे हैं कि कालस्य, काल भी द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण बता दिया और उसके जस्ट बाद कालस्य क्या शब्द जो है वो उस पूरे पिछले वाले सूत्र से सूत्र को जोड़ता है। तो यहाँ अर्थ क्या निकला कि काल भी द्रव्य है। द्रव्य के दो लक्षण हैं, दोनों लक्षण काल में पाए जाते हैं, इसलिए काल भी द्रव्य है। अब इसके बारे में और भी बहुत डिटेल है, अपन उन सबको नहीं भी जाने तो कोई आवश्यकता नहीं है। इतना जान सकते हैं कि काल दो प्रकार का होता है, एक निश्चय काल होता है, एक व्यवहार काल होता है। वर्तना निश्चय काल है और जो परिणाम क्रिया परत अपरत नया पुराना घड़ी घंटा दिन इत्यादि वो सब जो है वो व्यवहार काल है। और काल के जो कालानी है वो लोक में सब चारों एक असंख्यात प्रदेशों पर एक 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 कालानी असंख्यात कालानी लोक के प्रत्येक प्रदेश पर उपस्थित हैं और वही ही द्रव्य हरेक द्रव्य के परिणमन में सहयोगी बनते हैं। इवन काल द्रव्य का परिणमन भी काल द्रव्य के द्वारा ही होता है और इसके लिए उदाहरण दिया है कुम्हार के चाक को घुमाने वाली कील के समान, जो कील तो अपने आप में उदासीन रूप से रहती है लेकिन तो ऐसा जो है उदाहरण भी दिया है काल के लिए। तो अनंत समय वो जो काल द्रव्य है वो अनंत समय वाला है, यानी काल के समयों का अंत नहीं,
कंटिन्यूटी बनी रहेगी।
हाँ, मतलब इसीलिए तो अपन कहते हैं कोई भी चीज को कि बिगनिंग लेस और एंड लेस। अब बताइए काल कब से शुरू हुआ और काल कहाँ जाके खत्म होगा? तो काल अनंत है, भूत भविष्य और वर्तमान ये तो व्यवहार काल के भेद होंगे, लेकिन वर्तमान काल का प्रमाण तो एक समय कहा जा सकता जो कि तुरंत गुजर रहा है, लेकिन इसके पहले अतीत और इसके आगे भविष्य वो तो अनंत है। दोनों तरफ जहाँ भी जाएंगे हम इस एक क्षण को छोड़ करके आगे पीछे वो दोनों ही अनंत कहलाएंगे। इसी अपेक्षा से यहाँ पर व्यवहार काल अनंत समय वाला है, ये अर्थ नहीं है अपन का। काल के सबसे छोटे अंश को समय कहते हैं,
सबसे छोटे
छोटी इकाई है समय।
पहले आपने बताया
अब जो है तो पर्याय और गुण का समूह है द्रव्य, तो उसमें गुण किसे कहते हैं? इसके लिए एक अलग से सूत्र बना दिया, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं और अन्य गुणों में नहीं पाए जाते हैं वे गुण कहलाते हैं।
अन्य गुणों में नहीं पाए,
हाँ, एक गुण दूसरे गुण में नहीं पाएगा, मिक्स नहीं होगा। तो गुण का ये लक्षण पर्याय में ही पाया जाता है, क्योंकि पर्याय भी जो है वो द्रव्य के आश्रय से ही रहती है और उसमें गुण भी नहीं रहते, तो फिर ये लक्षण कैसे ठीक हुआ, ऐसा प्रश्न कर दिया उन्होंने। तो कहती नहीं, गुण तो सदा द्रव के आश्रित रहते हैं, कभी द्रव को नहीं छोड़ते, लेकिन पर्याय तो एक के बाद एक जो है वो परिवर्तित होती है, एक आती है दूसरी जाती है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। दो पर्याय एक साथ एक द्रव में नहीं रह सकते, एक ही पर्याय रहेगी एक समय में। इस तरह से ये गुण का लक्षण जो है वो बन जाता है। अब पर्याय की परिभाषा भी तो बनानी है, गुण की परिभाषा बना दी, पर्याय की परिभाषा बनानी है। तो यह चीज जिसको अपन परिणमन कहते हैं या परिणाम कहते हैं, तो कहते हैं कि परिणाम या परिणमन ये है क्या चीज, तो उसके लिए एक सूत्र भी बना दिया, तद्भाव परिणाम। जो धर्मादि द्रव्य हैं उनका जो स्वभाव है उसे तद्भाव कहते हैं, और तद्भाव का नाम ही परिणाम है। जो द्रव्य का स्वभाव है वही उसका परिणाम। जैसे धर्म द्रव्य का स्वभाव जीव और पुद्गल को गति में निमित्त बनना है, ये उसका तद्भाव है, यही उसका परिणाम है, यही उसका स्वभाव है। इस तरह से इस प्रकार के पांच पाठ है। अब जो है और कर लेते हैं, अभी तो क्रम है, ठीक है। सत्य अध्याय में विशेष रूप से आश्रय तत्व की व्याख्या की गई है। अभी तक अपन ने जीव और अजीव, चार अध्यायों में जीव तत्व का और पांचवे में अजीव तत्व का वर्णन पढ़ा है। ये आश्रय तत्व का व्याख्यान इस सत्य अध्याय में विशेष रूप से दिया है। काय वांगमन कर्म योगा, काय अर्थात शरीर वचन और मन, इनकी क्रिया को योग इसी परिभाषा है। पर वास्तव में देखा जाए तो जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, या जो मन वचन काय के द्वारा प्रयत्न विशेष होता है, उसे योग कहते हैं। हम लोग क्रिया तो बहुत सारी करते हैं मन वचन काय की, लेकिन उस क्रिया के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको कहेंगे योग। नहीं तो मन वचन काय की क्रिया तो अलग अलग दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा कर्म का बंध कैसे होगा, क्योंकि उसके आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसके द्वारा ही कर्म बंध होता है, और वह योग कहलाता है। योग के द्वारा ही आश्रय होता है। इसलिए आगे वाले सूत्र में सीधा कह देंगे कि सा आश्रय, वो जो योग है वही आश्रय है। जिस प्रकार से कहीं पर पानी आने का द्वार होता है, तो उसी प्रकार से द्वार से पानी आने को आश्रय कहेंगे, उसी प्रकार से मन वचन काय की क्रिया से होने वाले आत्मा के प्रदेशों की हलन चलन के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना शुरू हो जाता है। ये जो कर्मों का आगमन है उसको आश्रय, और वही योग की क्रिया। अब जो योग के द्वारा कर्म आते हैं वे दो प्रकार के, शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। तो आगे वाले सूत्र में कह रहे हैं शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। आप किसी जीव के घात करना या चोरी करना, ये सब जो है शरीर से किया जाए तो वो अशुभ का योग है। इसी तरह झूठ बोलना, कठोर अशुभ वचन बोलना, ये सब जो है अशुभ वचन योग है। और किसी के मारने का विचार या किसी से घृणा द्वेष इत्यादि करना, ये सब अशुभ मनोयोग हो जाएंगे। जिसके विपरीत जो है वो शुभ हो जाएंगे। इनके द्वारा पाप का आश्रय भी होता है, और दूसरे की रक्षा करना शरीर के द्वारा, हितमित प्रिय वचन बोलना, दूसरे का भला सोचना, ये सब जो है शुभ मन वचन का ही क्रिया है, इनके द्वारा पुण्य का आश्रय। तो यहाँ एक प्रश्न इन्होंने किया है इसमें कि योग कैसे शुभ अशुभ हो सकता है। योग तो मन वचन काय की क्रिया से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो कैसे शुभ अशुभ होता। तो उत्तर उन्होंने बहुत आसान दे दिया है कि शुभ परिणाम से होने वाला योग शुभ है। हमने सिर्फ यहाँ ये लिया है जिसमें शुभ परिणाम है वो मन वचन काय की, यानी हमारा अभिप्राय अच्छा है, तुम्हारी मन वचन काय की सारी क्रियाएं ठीक मानी जाएंगी।
अभिप्राय है वो, हाँ
वो उस पर हमारा जो प्रयत्न विशेष जो अंदर हो रहा है या जिसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है। तो उस शुभ परिणाम से होने वाला योग शुभ है और अशुभ परिणाम से होने वाला योग अशुभ है, ऐसा करके इन्होंने। तो दूसरी शंका भी इसमें आ सकती है कि शुभ कर्मों का कारण जो है वो शुभ योग है, और जो पाप कर्मों के आगमन का कारण है वो अशुभ योग है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो क्योंकि तो ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो शुभ कर्म का कारण है वो शुभ योग ही हो, ऐसा नहीं है। शुभ योग के द्वारा सिर्फ शुभ ही कर्म आते हैं, ऐसा नहीं है। दसवें गुण स्थान तक जो है वो अशुभ कर्म भी आते रहते हैं, लेकिन योग तो उसका शुभ नहीं है।
सभी तरह के आते रहते हैं।
हाँ, सब तरह के कर्म शुभ अशुभ दोनों आते हैं। ऐसा लक्षण नहीं बना सकते, सिर्फ ये बना सकते हैं कि शुभ परिणाम से होने वाला योग शुभ है, इसलिए वो पुण्य रूप है। मैंने आंसर इस तरह से दिया है। शुभ योग से भी घाती कर्म का बंध हो रहा है तो कह रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों कहा कि शुभ योग से तो पुण्य कर्म का बंध होता है? तो कहते हैं कि ये घाती कर्म की अपेक्षा से हमने कथन नहीं किया, आघाती कर्म की अपेक्षा से कथन किया है। आघाती कर्म में पुण्य और पाप दोनों प्रकृति होते हैं, घाती कर्म तो हमेशा पाप रूप होता ही है, इसलिए जब हम पुण्य की चर्चा कर रहे हैं तो हम आघाती कर्म की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, घाती कर्म की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप कर्म का आश्रय होता है। शुभ योग के होते हुए भी घातिया कर्मों का अस्तित्व बना रहता है, उनका उदय भी आता है और उसी से उनके घातिया कर्मों का बंध भी होता रहता, पर शुभ योग के द्वारा हुआ है ऐसा तो नहीं। इस तरह से इन्होंने इसका समाधान किया है। अब आश्रयों के भेद कितने इसकी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं सक असाया कषायो सांप्राय क्रिया पथियो। सांप्राय क्रिया पथ ऐसे दो प्रकार का आश्रय होता है, कषाय सहित जीवों का सांप्रायिक आश्रय और जो कषाय से रहित जीव हैं उनके क्रियापद आश्रय होता है। इस तरह से आश्रय करने वाले दो प्रकार के जीव हो गए, एक कषायवान जीव है और एक कषाय रहित जीव है। जहाँ तक कषाय हैं जीवों के वहाँ तक जो आश्रय होगा उसको सांप्रायिक आश्रय कहेंगे, और एक स्थिति आती है जहाँ की मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है तो वहां जाकर के फिर जो आश्रय होता है उसको इरिया पद कहते हैं। विशेषता यह है कि जो सांप्रायिक आश्रय है उसमें स्थिति अनुभाग पड़ता है और एक निश्चित स्थिति अनुभाग उसमें पड़ता है, पर इरिया पद आश्रय जो है उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। प्रकृति प्रदेश तो पड़ता है पर वो कर्म आकर के अगले समय में ही
क्षय हो जाता,
क्षीण हो जाता, निर्जरित होकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए उसमें स्थिति अगर मानना चाहें तो एक समय की स्थिति है, पर वो एक समय की स्थिति मानना नहीं मानना नेग्लिजिबल है। इस अपेक्षा से उसमें स्थिति अनुभाग
बहुत
नहीं
होता। गुण स्थान में
वो ग्यारहवें गुण स्थान जाकर के दसवें तक जहाँ मोह है वहाँ तो सांप्रायिक आश्रय ही है। सांप्रायिक आश्रय ही संसार का कारण है, और जो कषाय रहे जीवों के ग्यारहवें गुण स्थान से लेकर तेरहवें तक आश्रय है वो तो केवल ज्ञान
की क्रिया है,
योग से ही होता है वो, उसमें कषाय नहीं होती। सांप्रायिक आश्रयों के भेद प्रभेद कितने हैं तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रियां पांच हैं, कषायें चार हैं, अव्रत पांच हैं, क्रियाएं 25 हैं, ये सब सांप्रायिक आश्रयों के भेद हैं। पांच इंद्रियों के द्वारा आश्रय होता रहता है, चारों कषायें क्रोध मान माया लोभ इनके द्वारा आश्रय होता है, और हिंसा चोरी इत्यादि जो पांच अव्रत हैं उनके द्वारा होता है। यहाँ पर 25 क्रियाएं बताएंगे, अगर चाहें तो उन 25 क्रियाओं के लक्षण भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। करना है 25 क्रियाओं की, ठीक है। 25 क्रियाएं जो है जैसे देवगुरु शास्त्र की पूजा करने रूप जो क्रिया है वो सम्यक को पुष्ट करने वाली होने से सम्यक क्रिया कहलाती है, इस तरह नाम दिया उसको। अब कुदेव आदि की पूजा करने की जो प्रवृत्ति है जिससे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है उस क्रिया को मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। शरीर से आवागमन की क्रिया करना ये प्रयोग क्रिया कहलाता है। स्वयं संयमी होते हुए भी अपने परिणाम असुजन की तरफ चले जाना ये समाधान क्रिया कहलाती है। अथवा इन क्रियाओं के द्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का आश्रय होता है, ये नहीं समझना था कि ये सिर्फ पापाश्रय के कारण ही है। इसमें कुछ क्रिया है जैसे समृद्ध वर्धनी क्रिया है वो पुण्य का आश्रय करेगी, स्वार्थ वाली क्रिया है वो पाप का आश्रय करेगी। अच्छा जो क्रिया इरिया पथ में निमित्त बनती है वो इरिया पथ कहलाती है, और क्रोध के आवेश में जो क्रिया की जाती है वो प्रादोष की क्रिया है। दुष्टता पूर्वक जो उद्यम किया जाता है दुष्ट अभिप्राय से वो काय की क्रिया है। हिंसा के उपकरण ग्रहण करना ये अधिकरण की क्रिया कहलाती है। बहुत संक्षिप्त में परिभाषा है इनकी। जो क्रिया प्राणियों को दुख पहुंचाए वो पारिताप की क्रिया कहलाती, किसी की आयु इंद्रिय बल आदि प्राणों का वियोग करना उसके प्राणों का घात करना ये प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। अब कोई समाधि जीव है राग के वशीभूत होकर जो सुंदर रूप देखने का प्रयत्न विशेष होता है वो दर्शन क्रिया कहलाती है। समाज से आलिंगन करने की जो भावना है वो स्पर्शन छूने की भावना है, स्पर्शन क्रिया है। अच्छा जो इंद्रिय के विषय हैं उनकी नई नई सामग्री जुटाना आज ये बहुत होता है, एक से एक आइटम दिए जा रहे हैं, वो सब क्या है प्रत्यय की क्रिया, उसके माध्यम से जीव के परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं, तो ये आश्रय में कारण बन जाती है प्रत्यय की क्रिया। जहाँ पर स्त्री पुरुष पशु आदि के उठने बैठने का स्थान हो उस स्थान पर मलमूत्र इत्यादि विसर्जन कर देना ये समंतानुपात क्रिया कहलाती, और बिना देखे साफ किए जमीन पर उठना बैठना या ना वो क्रिया कहलाएगी, इसमें भी जीवों का घात होता है। दूसरे के करने योग्य कार्य को स्वयं करने लगना ये स्वहस्त क्रिया है।
हाँ जो आपका कार्य करने का वही करें,
वही करें, जो दूसरे के करने का कार्य है वो ना करें। यहाँ पर दूसरे के करने से कार्य से ऐसा है कि अभी तक इससे बहुत डिस्कशन हुआ पर क्लियर नहीं हो पाया। कई बार ऐसी चर्चा आई कि मान लीजिए कि जो काम नाई का है उस काम को हम खुद करने लगे,
उसमें जो कर ही रहे हमारा कि अब सेवन करते हैं तो
इस तरह की क्रिया में एक राग भाव जो है उस राग की वजह से आश्रय होगा। तो आपके अभिप्राय पर निर्भर कर
स्वावलंब के ऊपर भी
स्वावलंबन पहली सपने आपने ठीक है, लेकिन इसलिए ये बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि दूसरे के द्वारा कौन सा काम और स्वयं के द्वारा कौन कौन क्या निर्धारित करेंगे, कौन से काम दूसरे के कौन से स्वयं के, इसलिए इससे ज्यादा कभी डिस्कशन नहीं हो पाया। पर एक जो प्रवृत्ति पाप में कारण है उसकी सम्मति दे देना ये कहलाती निसर्ग क्रिया। दूसरे के द्वारा किए गए पाप को प्रकट कर देना ये विदारण क्रिया है। इससे स्वयं भी आश्रय होता है। चारित्र मोह के उदय से शास्त्र में जो आवश्यक क्रियाएं कही गई हैं उनको पालने में समर्थ नहीं है, पर उनका विपरीत कथन कर देना कि नहीं उनकी आवश्यकता नहीं, तो वो आज्ञा व्यापार की क्रिया कहलाती है। आलस या मूर्खता के कारण आगम में कही गई विधि का अनादर करना या अनाकांक्ष क्रिया कहलाती। छेदन भेदन आदि में तत्पर होने की जो क्रिया है या दूसरा कोई वैसा करे तो उसको देख के प्रसन्न होना ये सब आरंभ क्रिया कहलाती है। परिग्रह की रक्षा में लगे रहना ये पारिग्रही की क्रिया है। ज्ञान दर्शन वगैरह के विषय में कपट का व्यवहार करना, ज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में, श्रद्धा के विषय में किसी से कुछ किसी से कुछ बोल दिया ये सब माया क्रिया कहलाएगी। कोई मिथ्या क्रिया करता हो या कोई कराता हो तो उसकी प्रशंसा करके उसको उस काम में और ज्यादा मजबूत कर दिया तो मिथ्या दर्शन क्रिया। ये भी बहुत मुश्किल होता है, कई बार जो है लोग इन्हीं कामों के लिए आशीर्वाद मांग लेते हैं, अब वो बिल्कुल मिथ्यात्व का काम है तो उसमें बहुत बचना कि उसमें हमारी अनुमोदना ना हो जाए, नहीं तो उसमें भी पाप का बंध होता है। संयम को घातने वाले कर्म के उदय में संयम का पालन नहीं कर पाना ये अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस तरह से ये 25 क्रियाएं हैं जो सांप्रदायिक आश्रय के लिए कारण बनती हैं। अब आता है कि योग की समानता होने पर भी आश्रय में भेद तो बना रहता है, किसी को कम होता है किसी को ज्यादा होता है, तो उससे क्या किस कारण से ऐसा है। आश्रय में जो भेद पड़ता है योग की समानता होने पर भी उसको बताने के लिए योग सूत्र है। तीव्र मंत्र जाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष तद विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर यानी सामर्थ्य, इन सबकी विशेषता से आश्रय में भी अंतर पड़ता है। अब तीव्र भाव वो कहलाते हैं क्रोध आदि कषाय की तीव्रता होना तीव्र भाव कहलाया, और कषाय की मंदता होना ये मंद भाव कहलाया। तो कोई व्यक्ति बहुत तीव्र कषाय के साथ कोई कार्य करेगा तो उसको आश्रय अधिक होगा, उसकी स्थिति अधिक पड़ेगी, और कषायों की मंदता से कोई करेगा तो वो मंद भाव कहलाएगा, फर्क आएगा। और संकल्प करके किसी व्यक्ति को जान बूझ करके कि मैं इस व्यक्ति को तकलीफ पहुँचाऊँ ऐसा भाव जो है वो कहलाता ज्ञात भाव, या किसी व्यक्ति का घात हो गया तो घात होने के बाद जो है मालूम पड़ गया कि मैंने उसे मार दिया है तो ये भी ज्ञात भाव कह रहा है। और एक वो होता है जिसमें कि प्रमाद से बिना जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का घात हो जाता है तो वो सब अज्ञात भाव कह रहा है। मतलब हमने आपको कोई बात कही उससे आपको तकलीफ पहुँचती, लेकिन हमारा कोई भाव नहीं था आपको तकलीफ पहुँचाने का, तो ये अज्ञात भाव कह रहा है। और हमारा भाव था आपको तकलीफ पहुँचाने का, या आपको तकलीफ पहुँच जाने के बाद हमने कहा कि हाँ ठीक हुआ है, तो ये ज्ञात भाव हो गया। पर ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के भाव से अलग अलग आश्रयों में होता है। आश्रयों का जो आधार है, जो द्रव्य है, वो कहलाएगा उसका अधिकरण। जैसे कोई हिंसक चित्र देखता है तो उसको अपने भीतर वैसा भाव उत्पन्न हो जाता है, ये उसका अधिकरण होगा, उसके वजह से होगा। किसी को बहुत दुखी देखते हैं तो अपने अंदर भी बहुत दुख महसूस होने लगता है। ये एक तरह का जो भाव है जो अपने भीतर पहुँचता है, तो उसके बाद उसको बोलते हैं अधिकरण। अब वो दो प्रकार का होता है, आगे जाकर के कहेंगे जीव और अजीव दोनों प्रकार का होता है। और शक्ति यानी जिस शक्ति के अंदर ज़्यादा सामर्थ्य होती है वो इतना आश्रय करता है, क्योंकि उसकी मन वचन का अंतिक्रिया बहुत प्रबल होगी,
तीव्रता आ जाती,
बहुत तीव्रता आएगी उसके अंदर। और उसको उन्होंने सामर्थ्य दिया है कि सामर्थ्य भी जो है और व्यक्ति के आश्रय में फर्क करती है। कमजोर व्यक्ति उतना ज़्यादा आश्रय नहीं कर सकता जितना समर्थ व्यक्ति कर सकता है। तो समर्थ व्यक्ति आश्रय को रोकने में भी उतना ही समर्थ है जितना कि आश्रय को करने में समर्थ है। तो दोनों तरफ से हैं, तो कई बार आता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान है तो पाप भी उतना ही कर सकता है, लेकिन वो अपना धर्म भी उतना ही कर सकता है। दोनों तो इस तरह से आश्रय में इन सब बातों से भेद पड़ जाता है। अब अधिकरण की तरह अधिकरण का जो भेद है उसको और एक्सप्लेन करते हैं कि अधिकरण जीवा जीवा, अधिकरण आश्रय का जो बनता है वो जीव अधिकरण भी बनता है और अजीव अधिकरण भी बनता है। अब जीव अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए अलग से सूत्र दे दिया और अजीव अधिकरण के लिए अलग सूत्र दे दिया, जो सूत्र उसके लिए दे दिया। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरम्भ योग कृत कार्य का अनुमत कषाय विशेष ही त्रिचतुष्ट। उसमें ये प्रसिद्ध है अपने यहाँ पर संभ्रम्भ समारंभ आरम्भ मन वचन का है, कृत कार्य को संवेदन क्रोध मान माया लोक के कषाय, ये परस्पर सबको गुणा कर दिया गया कि 108 आते हैं, तो ये जीव अधिकरण कहलाते हैं। इन 108 प्रकार से आश्रय होता है, इसीलिए जो है प्रसिद्ध है 108 आश्रय के द्वार। ये सब जो है जीवाधिकरण। अब प्रमाद पूर्वक जो है हिंसा वगैरह का विचार करना अकेला ये संभ्रम कहलाता है, और हिंसा करने के लिए साधन जुटाना सामग्री इकट्ठे करना ये संभ्रम्भ का समारंभ कहलाता है, और हिंसा करने लगना तो जो आरंभ कहलाएगा, स्वयं करना ये कृत है, दूसरे से कराना ये कारित है, कोई करता हो तो उसका समर्थन अनुमोदन तो वो अनुमोदना है। और इसमें जो संभ्रम्भ समारंभ आरंभ है वो मूल है। अब उसमें फिर मन वचन काय उससे जुड़े हुए हैं, स्वयं कर रहे हैं दूसरे से करा रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं, ये सब तो और कोई ना कोई कषाय रहेगी, तो इनको मल्टीपल करते हैं। 108 प्रकार से ये जीव अधिकरण बनता है। जीव के आश्रित हैं ये सारे भाव, क्योंकि विचार कर रहा है या कलेक्शन कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है, और मन वचन का आय तीनों से कर रहा है, स्वयं कर रहा है दूसरे से करा रहा है, यदि कोई करते हुए की प्रशंसा कर रहा है, और कौन सी कषाय है, इस प्रकार से जो आश्रय ये सब जीव के आधार से हैं। अजीव अधिकरण के कितने भेद हैं तो कह रहे हैं कि निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्थी त्रिभेदा परक। निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग ये तीन भेद अजीव अधिकरण के। इसमें से निर्वर्तना तो दो प्रकार की है और निक्षेप चार प्रकार के हैं, और संयोग दो प्रकार के हैं, और निसर्ग जो है वो तीन प्रकार के हैं। मैंने शायद ये कह दिया कि निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग ये तीन भेद हैं, ये चार भेद है अजीवाधिकरण। रचना करना या बनाना बनाना ये कहलाती निर्वर्तना। निर्वर्तना मतलब टू कंस्ट्रक्ट, वो भी है मूल गुण निर्वर्तना होती है, उत्तर गुण निर्वर्तना होती है। अब शरीर मन वचन काय सांस उच्छ्वास की जो रचना होती है अपने भीतर वो तीन गुण निर्वर्तना कहलाती है, और जो लकड़ी वगैरह पर चित्र इत्यादि बनाते हैं अपन ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। इनके माध्यम से भी आश्रय होता है। रखने का नाम निक्षेप, बिना देखे हुए वस्तु को रख देना ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। इसके भी चार भेद दिए उन्होंने बिना देखे। फिर दुष्कमस्त निक्षेप कहलाता है कि दुष्टता पूर्वक अच्छे अभिप्राय से नहीं बुरे अभिप्राय से असावधानी से वस्तु को रखना उठाना ये दुष्कमस्त निक्षेप कहलाता है। इसको भी आश्रय होता है। फिर भय से या किसी अन्य सूचता में कार्य करने से वस्तु को जल्दी से ऐसा रख देते हैं जमीन पर तो वो सहसा निक्षेप कहलाता है। और बिना साफ की बिना देखी जमीन पर स्वयं उठना बैठना ये अनारोग निक्षेप कहलाता है। इन सब के माध्यम ये सब अजीब के माध्यम से होने वाला अश्व हो रहा है अजीब को, लेकिन उसके माध्यम तो अजीब बन रहा है।
पर उसमें मन की क्रिया तो हो रही है, हमारा जीव
की क्रिया तो हो रही, पर क्रियाएं बाहर की क्रिया को ज्यादा महत्व।
पर जैसे चित्र बना रहा है तो जब तक मन में भाव जैसे नहीं आएंगे तब तक वो चित्र बने
रहेगा। तो सर फिर भी उसने उन्होंने उसको मुक्तता न दे करके जो उसका धंधा है तो कर रहा है बेचारा, उसको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, अनेक वस्तुओं को मिलाने का नाम संयोग कहलाता है। उसमें भी शीत और उष्ण दो प्रकार का होता है, तो शीत और उष्ण उपकरण को मिला दिया एक साथ, ठंडे और गर्म को, शीत और उष्ण आपके शुद्ध अशुद्ध उपकरणों को मिला दिया। ये इस तरह से समझे अपन कि जैसे ये अभी धूप में से भीतर जा रहे हैं तो ये अभी गर्म हो गई थी तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर भीतर जाना चाहिए कायदे से, नहीं तो ये संयोग हो जाएगा। उपकरण जो है अभी गर्म हो गया था, वहाँ से ठंडे में ले गए, तो यहाँ के जो जीव थे
उनको
तकलीफ है, क्योंकि स्वयं भी अपन धूप में बैठे थे ऐसा भीतर चले गए,
वो शरीर में जो लगे हुए हैं वो
ये बहुत इसमें सूक्ष्म है। वो इस तरह से अब इसी तरह ठंडी चीज के साथ गर्म चीज मिला के खा लेना या गर्म चीज के साथ ठंडी चीज मिला के खा लेना, इसी में आएगा सब संयोग है। ये यदि सब रचित खान पान की चीजों को आपस में मिला दिया तो ये एक प्रकार का संयोग हो गया, उपकरण संयोग हो गया, भक्तपान संयोग हो गया। निसर्ग का मतलब है प्रवृत्ति करना, एक्शन करना। अब एक्शन जो है मनो निसर्ग भी होता है, मन के खोटे अभिप्राय के साथ में जो एक्शन होगा वो सब मनो निसर्ग कहलाएगा। वचन भी इसी तरह से जो सहिताय से किए जाएंगे वो वचन निसर्ग कहलाएगा, और शरीर की क्रियाएं भी जो है दुष्टतापूर्वक जिसको कह रहे हैं वो खोटे अभिप्राय से करना ये काय निसर्ग कहलाता है। इसमें अच्छा अभिप्राय नहीं दिया इसमें, इससे ये लगता है कि ये जो जितने भी अधिकरण बनते हैं आश्रय में वो अशुभ के आश्रय के लिए ही बनते हैं, पर शुभ के आश्रय के लिए भी बन सकते हैं। यहाँ मुख्यता जो है आश्रय की अशुभ के आश्रय की मुख्यता से है। पर जैसे अपन पूजा के उपकरण इत्यादि भी देख करके या बीतरागी भगवान की प्रतिमा देख करके भी अपने मन में जो अच्छे विचार आते हैं वो पुण्य के आश्रय में कारण होगा, वो भी अजीब अधिकरण है उसके माध्यम से ये हुआ है, वो इसमें मुख्यता उसको नहीं दी। इस तरह से आश्रय के बारे में सामान्य चर्चा हुई। अब आठों कर्मों का आश्रय किन किन पदों से होता है, किन किन कारणों से होता है, इसको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। एक प्रदोष निहना मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों का आश्रय एक जैसे कारणों से ही होता है। वो कह रहे हैं कि प्रदोष निहना मात्सर्य अंतराय असाधना और उपघात ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। वैसे तो एक ही भाव से सारे कर्मों का आश्रय होता है, पर उस भाव में जिस तरह की सामर्थ्य है उससे वो कर्म ज्यादा बंध को प्राप्त होता है, ये अपेक्षा है। जैसे कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है लेकिन अब कुछ बोल नहीं जा पा रहे उसके सामने, इसलिए बिना बोले मन ही मन उस व्यक्ति के उस ज्ञान की निंदा करना मन ही मन में, ये कहलाता प्रदोष, मतलब ठीक नहीं है। मन में जो है अच्छा फील नहीं हो रहा व्यक्ति, वो तो बिल्कुल बढ़िया उपदेश दे रहा है, पर आप जो है ईर्ष्यावश या और भी जो भी मन में भाव आए हों तो उन बुरे भावों से उसके उस ज्ञान की निंदा कर रहा है मन ही मन बैठे बैठे, तो उसको ज्ञानावरण कर्म बनेगा, दर्शनावरण कर्म भी बनेगा उसी दोनों के लिए। अब शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी ने पूछा कि क्या आप ये बता सकेंगे, मैं नहीं जानता। आप अर्थात तब के आप नहीं जानते हैं ये बात अलग है, पर इस अभिप्राय से कि इसे नहीं बताऊंगा तो ये नहीं तो ये ज्यादा पड़ जाएगा, ज्यादा सीख जाएगा। तो शास्त्र का नाम और गुरु का नाम दोनों ही छिपा लिया, बताने से इनकार कर दिया, जानते हुए भी किताब होते हुए भी नहीं दी, तो ये सब निंदा कहलाता है। और अपने को शास्त्र का ज्ञान हो रहा है होते हुए भी दूसरे को नहीं देना क्योंकि वे लोग जान लेंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे, ये अलग भाव है, ये मास्टरी कहलाता है। कुल मतलब ये है कि ज्ञान होने और नहीं होने पर दोनों स्थितियों में जो मन का विचार है वही आश्रय का कारण बन जाता है। किसी का ज्ञानाभ्यास देख करके उसमें विघ्न डालना ये अंतराय कहलाएगा, और
ज्ञान का आदर नहीं करना, बल्कि उल्टे जो है उसको उपदेश देने वाले को रोक देना, ये कहलाएगी उसकी आसाधना। अनादर करना ही आसाधना है वास्तव में। तो कोई ज्ञानी है उसका भी अनादर कर दिया, उन्होंने चलिए आप स्वयं लीजिएगा, आप बैठिएगा, इस तरह से जो है और सम्यक ज्ञान को एकदम झूठा ही बता दिया, तो फिर उसका उपघात ही हो गया, नाश ही कर दिया आपने उस समीचीन ज्ञान का। तो इस तरह से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन कर्मों का आश्रय होता है। विशेष रूप से ये ज्ञानावरण दर्शनावरण सम्यक ज्ञान को लेकर के कथन आता है कि समीचीन ज्ञान में दोष निकाल रहा है, मिथ्या ज्ञान में दोष निकालने वाली बात यहाँ दुख शोक पापा क्रंदन बड़ परिदेव नान्यापि परोभय स्थानान्य सद्वेद्य। अब असाता वेद भी कर्म का आश्रय कैसे होता है, किन वजहों से होता है, तो उसके लिए ये सूत्र है कि स्वयं दुख करना, शोक करना, ताप संताप जिसको कहते हैं, आक्रंदन वीपिंग रोना, बद मारने का भाव करना, परिवेदन या परिदेवन परि परिदेव, ये स्वयं करना, दूसरे के करने या दूसरे करवाने, इन सब में जो है स्वयं के लिए असाता का दंड होता है। पीड़ा का जो परिणाम है वो कहलाता दुख। अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करेंगे, जो पीड़ा का परिणाम है वो कहलाता दुख, और किसी कारी व्यक्ति का वियोग हो जाने पर मन में जो विकलता आती है उसको कहलाता शोक कहलाता, और लोक में निंदा वगैरह हो जाए तब से जो तीव्र पश्चाताप होता है वो कहलाता संताप या ताप, और पश्चाताप से दुखी होकर के जो हम रोते हैं वो कहलाता आक्रंदन, और किसी के प्राणों के घात करने का भाव हो जाना ये कहलाता बध, और अत्यंत दुखी होकर के ऐसा रोना जिससे कि दूसरे का मन भी जो है दुखी हो जाए, बहुत अधिक द्रवित हो जाए, तो वो कहलाता परिदेव। इस प्रकार के जो परिणाम है, जो जीव स्वयं करता है या दूसरे को दुखी करता है या रुलाता है, जो स्वयं दुखी होता है, तो सब जो है असाता के आश्रय के कारण।
असाताप से जो भाव होते हैं उससे तो पाप का आश्रय नहीं होना चाहिए।
अब इसमें दोनों चीजें हैं कि जो हमारे अपने कर्मों के ऊपर हम जो रो रहे हैं कि देखो हमने ऐसे कर्म किए और हम उसका ये तो वैसे तो प्रतिक्रमण में यही लिखा है कि अंतो अंतो दग्धम सच्छता वेद वेदन, तो मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है। तो अपनी गलती स्वीकार करके जो पश्चाताप किया जाता है उसमें तो भाव अलग है, उसमें भी संतोष है, लेकिन उसमें भाव होता
है। हाँ, बट पुण्य अष्ट भी होगा ना वहाँ से,
और अष्ट तो पुण्य अष्ट होगा, भगवान के सामने जाकर के अपने पुण्य अष्ट हो रहे हैं वो। ये तो विषय प्रसाद की सामग्री छीन जाने पर जो होता है, अरे ऐसा ना करके मुझे ऐसा कर लेना था, पश्चाताप है वो पश्चाताप तो पाप के अष्ट का कारण है, लेकिन जो धर्म की सामग्री कि अभाव में हमें एक दुख और पश्चाताप होता है कि अरे देखो महाराज इतने दिन तक रहे और हम लाभ नहीं ले पाए उससे, अब बाद में सुधाई तो पश्चाताप कर रहे हैं, तो ये तो श्रेष्ठी हुआ। जीवन भर धर्म नहीं कर पाए, आखिरी समय ऐसा ध्यान आ रहा है कि मंदिर तक नहीं जा पाया हमें, तो वो पश्चाताप तो उसको पुण्य के आश्रय का, लेकिन विषय सामग्री मुझे ऐसी भोगना थी ऐसा नहीं भोग पाया
वो पश्चाताप
पाप का आश्रय का कारण असाता के हो गए। कह रहे हैं आगे जाकर के कि साता में कौन कारण बनेगा। आगे इसमें प्रश्न भी किया इन्होंने कि स्वयं दुख उठाना, दूसरे को दुख में डालना, ये सब आप कह रहे हैं कि असाता का कारण है, तो फिर तीर्थंकर कृष्ण उपवास और धूप में खड़े होकर तपस्या इत्यादि करते हैं, दूसरे को उपदेश भी देते हैं, ये सब बातें दुख जाने वाली हैं। तो उत्तर बहुत अच्छा दे दिया कि कषाय के आवेग में जो आकर के दुख स्वयं उठाया जाता है और दूसरे को दिया जाता है वो असाता का, लेकिन एक दयालु कोई व्यक्ति होकर के और किसी रोगी का उपचार कर रहा है, डॉक्टर है, तो वो रोगी को तो उससे कष्ट पहुंच रहा है, लेकिन वहां चूंकि उस डॉक्टर के रोगी को दया भाव से दुख दूर करने का है और फिर भी उसे दुख पहुंच रहा है, इसलिए वो पाप का आश्रय नहीं बनेगा, वो पुण्य का आश्रय। इस तरह अगर अपन देखें तो अपने अभिप्राय पर निर्भर
करते हैं।
अब साधा वेदनी के लिए कौन से कारण बनेंगे आश्रय के, तो भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद। भूत का अर्थ यहाँ पर जीव या प्राणी लेना है, तो प्राणियों पर और व्यक्तिजनों पर इन पर अनुकंपा है, अनुकंपा का अर्थ यहाँ पर है इनको दुख ना हो, ऐसा विचार किसी जीव को दुख ना हो, विशेष रूप से व्रतीजनों को भी ना हो,
करना
ये अनुकंप और दान उनके लिए जो है कल्याण की भावना से दान देना और सराग संयम का पालन करना, सराग संयम का पालन मन राग सहित संयम का पालन करते हैं छठे गुण स्थान तक तो होता ही है, इन सब के द्वारा जो है और भी आदि शब्द से इन्होंने ये ले लिया है कि अकाम निर्जरा या कि बाल तप ये सब करने पर भी और साधा बेदने का बल होता है और शांति, शांति का मतलब क्षमाभाव रखना सभी के प्रति और शौच का मतलब है यहाँ पर मन की पवित्रता यानी निर्लोप प्रति होना, ये सब साधा बेदने के कारण है। तो मैंने सभी जीवों पर और व्रतीजनों पर उन सब के प्रति जो है उनको दुख ना हो और दया भाव रखना या उनकी पीड़ा को अपनी समझना और दूसरे के कल्याण के लिए दान इत्यादि देना ये सब जो है साता वेदनी के कारण बने। दर्शन में होने कर्म के आश्रय के लिए क्या कारण बनते हैं, ये तो वेदनी हो गया ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी कर्म के जो कि दो भेद हैं दर्शन मोहनी और चारण मोहनी, तो पहले कह रहे हैं दर्शन मोहनी के लिए केवली शुद्ध संग धर्म देवा वरण बाधु दर्शन मोहस केवली भगवान शुद्ध संग धर्म और देव इन पर झूठा आरोप लगाना जो दोष उनमें नहीं है वो दोष उनमें लगाना ये कहलाता अवरणवाद। महापुरुषों ने या कि विशेष जनों में गुणी जनों में जो दोष नहीं है उन पर वो दोष लगाना ये कहलाता है अवरणवाद। ऐसा अवरणवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म बनता है। जैसे केवली भगवान को भी केवल ज्ञान के बाद भी उनको भूख लगती है भोजन इत्यादि करना पड़ता है वो कल्ला हार लेते हैं ऐसा कह देना तो ये हो गया केवली का अवरणवाद। और जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान में तो हिंसा को भी अच्छा माना है मांस भक्षण इत्यादि का विधान है इस तरह से जो है शास्त्र को के बारे में मिथ्या प्रचार करना और जो दिगंबर साधु नग्न रहते हैं अरे वे स्नान भी नहीं करते हैं बड़े अपवित्र निर्लज्ज हैं वे और ये तो इस तरह से ये कहलाता संघ संघ के बारे में उन्हीं संघ के बारे में झूठा दोषारोपण करना और जिनेंद्र भगवान का धर्म तो चूंकि अहिंसा प्रधान है और उसकी भी निंदा करना और उस धर्म को झूठा कहना कि जिनेंद्र भगवान के कहे हुए धर्म में कोई सार नहीं है ऐसा कह देना ये कहलाएगा धर्म का अवरणवाद। और देव लोग भी जो है मांस मदरा इत्यादि का सेवन करते हैं ऐसा देवों के बारे में झूठा कथन करना ये सब जो है हमारे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण बनेंगे। और चारित्र मोहिनी के आश्रय का क्या कारण बनता है तो कषाय दया तीन परिणाम चारित्र मोह से कषाय के उदय से स्वयं के परिणाम कलुषित होने पर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है इस तरह से ये उन्होंने इतने कर्मों के आश्रय को के बाद जो है आयु कर्म के आश्रय के क्या क्या कारण हैं इस पर चर्चा करते हैं। बहुआ रंग परिग्रह तो नारकश आयु से पहले ये नरक आयु के आश्रय के कारण बता रहे हैं कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। अब पाप क्रियाओं को आरंभ कहते हैं और मनत्व भाव को परिग्रह कहते हैं तो बहुत अधिक पाप क्रिया में संलग्न रहने की प्रवृत्ति और बहुत अधिक मनत्व भाव ये दोनों चीजें जो है वो नरक आयु के क्योंकि इससे बहुत तीव्र संक्लेश में बना रहता है आदमी हमेशा आरंभ जो है वो परिग्रह की भावना से ही किया जाता है और फिर जो परिग्रह संचित हो गया उसमें बहुत अधिक मूर्छा हो गई तो ये दोनों ही नरक आयु के आश्रय में कारण बनते हैं। तिरंज आयु के आश्रय के क्या कारण है इसके लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं माया तैरग्य नश्य मायाचार जो है वो तिरंज आयु के आश्रय का कारण है। ये संक्षेप में यहाँ पर आचार्य महाराज एक एक बात कह करके हालांकि इतने ही अकेले से इस आयु का बंध होता है ऐसा नियम नहीं है पर सामान्यतः जो है मायाचारी बहुत जो व्यक्ति करता है वो तिरंज पर्याय को ही प्राप्त करता है। जैसे एक अपने उदाहरण आता है कि मुनि महाराज ने भी एक बार जो है वो मायाचारी करी तो उनको हाथी की पर्याय मैंने तिरंज पर्याय में प्राप्त होने पड़ा इसलिए जो है ये प्रमुख कारण उसका ये बता दिया। वैसे और भी बहुत सारे कारण हैं इस आयु बंध के लिए
क्या सोच
रहे हैं? ये सोच है कि इससे ऐसा लग रहा है कि परिग्रह ज्यादा कष्टदायक है बजाय मायाचारी की, क्योंकि नरक और लंच में अगर आप कंपेरिजन करें
हाँ।
तो ऐसा लगेगा कि नरक ज्यादा दुर्दायी है।
ये तो है।
तो परिग्रह और आरंभ ये दो कारण जो है वो माया से भी ज्यादा कष्टदायक है, ऐसा लग रहा
है। अल्पारंभ परिग्रह तो मानुष्य से मनुष्य आयु के आश्रयों के कारणों में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखना ये मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। तो स्वभाव बार्ध्वंचा ऐसा एक सूत्र कह दिया कि जो स्वभाव से ही जिसके परिणाम में कोमलता होती है मृदुता होती है वो भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण
है। मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा ना?
मिथ्या दृष्टि तो होना ही तीनों आयुओं के लिए, मैंने माया ये तिरंज आयु नरक आयु और मनुष्य आयु ये मिथ्या दृष्टि को ही बनेगी, सम्यक दृष्टि को तो एकमात्र देवायु ही बनेगी, ऐसा है। पर किसी ने आयु बंद कर लिया है फिर उसके बन जाएंगे। निश्चील व्रतत्वम च सर्वेषां, यहाँ पर और भी विशेष रूप से कह रहे हैं कि थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह, चार शब्द से तो अपन ने ले ही लिया, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह होने से और साथ ही शील और व्रतों का पालन न करने से, मैंने अव्रत अवस्था में भी व्यक्ति अगर रहे तो उसको वो चारों आयु के चारों प्रकार के आयु का बंद कर सकता है। अव्रति तो चारों ही आयु का बंद कर सकता है। क्या देवायु का भी आश्रय होगा? तो कहते हैं होता है, भोग दुनिया में जो है व्रतशील तो नहीं होते पर फिर भी वो देवायु का बंद करते हैं, वहां पर इस अपेक्षा से उन्होंने ले लिया है। अब देवायु के आश्रय के जो कारण है वो क्या है? तो सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, सराग संयम संयमा संयम अकाम निजरा बाल तप, ये देवायु के आश्रय के कारण है। राग पूर्वक जो संयम का पालन किया जाता है वो सराग संयम कहलाता है, मानी धर्मानुराग है, आत्मस्थ नहीं हुए हैं, संयमी है लेकिन अभी धर्मानुराग से और जो बाह्य क्रियाएं हैं आहार करना पढ़ाना लिखना ये सब के साथ जो संयम का पालन होता है वो सराग संयम कहलाता है, इससे भी देवायु का बंध होता है। प्रशंसा का त्याग करना लेकिन अभी स्थावर जीवों के त्याग का संकल्प नहीं किया है ये सही ना संयम या देश व्रत कहलाता, इसके द्वारा भी देवायु का ही बंध होता है। पराधीनता वर्ष जो है कहीं कारागार में बंद वगैरह कर दिया और फिर जो भूख प्यास के कष्ट सहना पड़े शांतिपूर्वक सह लिया इसलिए निजरा तो ही पर वो अकाम निजरा कहलाएगी क्योंकि हमने परवश होकर के वो वैसा किया है तो ये अकाम निजरा कहलाएगी, इससे भी देवायु का बंध होता। और आत्मज्ञान तो है नहीं यह कि सम्यक दर्शन तो है नहीं और तपस्या तो बहुत कर रहे हैं वो कहलाएगा बाल तप, उस बाल तप के द्वारा भी देवायु का ही बंध होता है। इस तरह ये देवायु के आश्रय के कारण है लेकिन इसमें सभी प्रकार के देवों की चर्चा हो जाएगी, चारों निकाय के देव की आयु बंध हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि और भी जो देवायु के कारण है जो कि स्पेशली वैमानिक देवों के लिए है उसके निरख से सूत्र लिख रहे हैं। सम्यक त्वचा, सम्यक दर्शन के साथ भी देवायु का बंध होता है पर सम्यक दर्शन से अमुक देवायु का कारण है, पर अलग सूत्र सपन ने यह अर्थ निकाला है कि सम्यक दर्शन अगर है तो फिर वैमानिक देवों की आयु का ही आश्रय होता है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मर करके भवनात्मक में जन्म तो लेता नहीं है। इस तरह से जो है चारों आयु के लिए संक्षिप्त में उन्होंने आश्रय के कारण बता दिए। अब नाम कर्म के आश्रय का क्या कारण है? तो कह रहे हैं योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना। नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो इसमें जो अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है वो ये है कि मन वचन काय की कुटिलता, मन में कुछ है वचन में कुछ है और वाणी के शरीर से कुछ और चेष्टा कर रहे हैं, तो इस तरह की जो कुटिलता है मन वचन काय की वो, और किसी को धर्म के मार्ग से जुड़ा कर अधर्म के मार्ग में लगा दिया ये भी जो है वो अशुभ कर्म अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण बनता है। अब इसमें एक चीज और आ गई कि योग वक्रता और विसंवाद, तो ये क्या चीज है, दोनों में क्या फर्क है? कह रहे हैं कि कोई मनुष्य किसी को धोखा दे तो ये तो इसमें योगों की वक्रता है, पर वो दूसरे को धोखा दे रहा है वक्रता की वजह से, और दूसरे को धोखा देना विसंवाद है, दोनों में एक कारण है और दूसरा कार्य है। विसंवाद में तेरे मेरे का परिणाम भी होता है, बस तेरे मेरे के परिणाम की वजह से ही तो संवाद होता है। तो इस तरह से किसी को धोखा देने की जो चेष्टा है उसके लिए जो मन वचन काय की वक्रता आ रही है वो तो कहलाएगी योग वक्रता, और जो धोखा दे ही दिया वो कहलाएगा विसंवाद। साधारण से विसंवाद नहीं करना ऐसा आता है, तो उसका आशय उन्होंने यही लिया है कि साधारण से तेरे मेरे का नहीं करना, नहीं तो जो है फिर तुम्हारे मन में संक्लेश होगा और धोखा देने की बात मन में आएगी, तो फिर अशुभ नाम कर्म का बात होगा।
नाम कर्म हमारे भी नारकियों में तो होगा,
नारकी में है सभी की बोले नाम कर्म का होता है, तो मूलक संस्थान होता है उनके नाम कर्म की पीड़ा में प्रकृतियां हैं, उनमें से अब दुर्भग सुभग अनादे आदे इस तरह के जो है भेद हैं, गति इंद्रिय जाति ये सब डिसाइड होंगे, जाति सभी में है, सभी में है। नाम कर्म के सहनम और संस्थान भी सब है, सब है उसमें, शरीर से आश्रित 93 प्रकृति
जैसे नरक एक नरक से दूसरे नरक में जाएंगे तो
हाँ उनकी हाइट कम होती जाती है,
कम होती जाती है।
पहले नरक से सातवें नरक में हाइट बढ़ती चली जाती है, हाँ ऐसा है,
सुनना उनका
उल्टा है, कम होती चली जाती। अब शुभ नाम कर्म के लिए अश्रु का कारण तो इससे विपरीत, तद विपरीतम शुभस्य, जो अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कहे हैं उनसे उल्टे शुभ नाम कर्म के, यानी मन वचन काय की सरलता और किसी को धोखा न देने की प्रवृत्ति, ये शुभ नाम कर्म के लिए कारण है। अब उसमें जो नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म है उसका आश्रय तो कुछ विशेष कारणों से होता है, वो 16 कारण भावनाओं के निमित्त से होता है, इसलिए उन 16 कारण भावनाओं की भी यहां चर्चा कर रहे हैं अगले सूत्र में। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता सील व्रतेश्व नतिजारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि भैयावृत्तकरण महर्दाचारी बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति भावस्य का परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के लिए ये 16 कारण भावनाएं निमित्त बनती हैं। अनंत भगवान के द्वारा कहे गए जो निर्ग्रंथता रूप मोक्ष मार्ग है उसको 8 अंग से युक्त होकर के और रुचि पूर्वक उसका पालन करना या उसका उसमें रुचि होना, उसका श्रद्धान होना, ये दर्शन विशुद्धि कहलाती है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में इतना ही फर्क है। और ये 16 कारण जो आश्रय के 16 कारण दिए हैं, 16 कारण भावना के रूप में, वो जब किसी तीर्थंकर या केवली शुद्ध केवली के पादुन में बैठ के बाहर की जाएंगी तभी ये आश्रय होगा, ऐसे सामान्य रूप से नहीं होगा,
विशुद्धि उतनी आती
है विशुद्धि नहीं आती। हाँ, विनय संपन्नता, विनय संपन्नता तो यही है कि जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले गुरु हैं उनका आदर सत्कार यथोचित करना, ये विनय संपन्नता कहलाएगी। सील व्रतेषु अनतिचार अहिंसा आदि व्रत है, व्रतों का पालन करने के लिए बताए गए जो सील है उन सबको निरतिचार बिना किसी अत्याचार के निर्दोष रूप से पालन करना, ये सील व्रतेषु अनतिचार है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, तो सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगातार लगे रहना, ये अवीक्षण ज्ञान उपयोग। और अवीक्षण ही संवेग, मतलब संसार के दुखों से सदा बचने के लिए प्रयत्नशील रहना, ये अवीक्षण संवेग कहलाएगा। शक्ति तस्त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान इत्यादि देना, ये शक्ति तस्त्याग कहलाएगा। शक्ति तस्तक, अपनी शक्ति के अनुसार जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया तप है कर्मों की निर्जरा के लिए, वो करते रहना, ये शक्ति तस्तक है। साधु समाधि, तपस्वी जो मुनि महाराज हैं उनके तप में कोई विघ्न आ जाए तो उसे दूर करके उनके संयम की रक्षा करना, ये कहलाएगी साधु समाधि। भैयावृत्तकरण, जो गुणवान साधु जन है उन पर विपत्ति आ गई तो उसको निर्दोष विषय से दूर करना, ये कहलाएगी भैयावृत्तकरण। और अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, तो इसमें अनंत भगवान की, आचार्य की, उपाध्याय की और धर्म आगम के, इन सबके विषय को विशुद्ध भाव से अनुराग पूर्वक उनका गुणगान करना, ये इसमें बहुत जरूरी है। भाव की शुद्धि, वो कहते हैं कि निर्मल प्रणाम हो और अनुराग हो इन सब में, तब वो भक्ति कहलाएगी। अनंत के प्रति हो, चाहे आचार्य के प्रति हो, बहुशुद्धवान यानी उपाध्याय के प्रति हो, या कि प्रवचन यानी धर्म के प्रति हो, और आवश्यक अपरिहानि, यानी जो सामान्य स्तवन वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का उत्सर्ग जो छह आवश्यक मुनि महाराज के कहे गए और श्रावक के भी कहे गए उन सब के लिए जो है वो प्रतिदिन समय पर ठीक ठीक रूप से करना चाहिए। मार्ग बहाना सम्यक दर्शन के द्वारा, ये तप के द्वारा, ये जिनेन्द्र भगवान की पूजा के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के कहे गए धर्म का किन्ना फैलाना, उसका प्रकाश करना, ये मार्ग बहाना कह रहा है। प्रवचन वत्सलत जैसे गाय अपने बचने के साथ सहज इसमें रखती है वैसे ही साधर्मी को देख करके चित्त में इसमें उड़ाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। ये इस तरह से 16 भावनाएं हैं जिनको अपन 16 कारण भावना कहते हैं, इनके द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। अब जो है गोत्र कर्म और अंत्याय कर्म बचे, तो गोत्र कर्म में भी दो है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र के लिए कह रहे हैं परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादने भावने च नीचै गोत्रस्, दूसरे की निंदा करना परात्मा और आत्मा की अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना। यहाँ आत्म प्रशंसा का तात्पर्य आत्मा की प्रशंसा करना नहीं है, अपनी प्रशंसा स्वयं की, और दूसरे के मौजूद गुणों को भी ढांकना और अपने में गुण नहीं होने पर भी उनको प्रकट करना, सद असद गुणों छादनो, ऐसे भाव से जो है हमेशा नीच गोत्र का ही बंध होता है। ये बहुत विचारणीय बात है कि नीच गोत्र कर्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। तो जो व्यक्ति इस तरह की चेष्टाएं करता है उसके तो नीच गोत्र की कदम हो रहा है, मतलब मिथ्यात्व के साथ हो रहा है। सम्यक दृष्टि इस तरह की बात नहीं करेगा, दूसरे की निंदा करने की और निंदा के पीछे भी जो है उसको गिराने की भावना वैसी है। और ये भावना अलग है कि देखो किसी के दोष की, देखो ये चीज उन्होंने है तो वो दूर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ये अलग चीज है। लेकिन उनके निंदा का भाव अलग ही, वो तो समझते, तो दूसरे की निंदा का भाव और अपनी प्रशंसा दोनों एक साथ चलने वाली चीज है।
मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता
है, इस तरह के भाव होंगे तो कैसे सम्यक दर्शन टिकेगा उसका, ये था। और उच्च गोत्र के लिए क्या आश्रय के कारण है, तद विपर्योग नीचैर वृत्तियों से कहु ज्योतिरस्य, नीच गोत्र के आश्रय के कारणों से विपरीत जो है वो उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति मतलब विनम्र, विनम्र वृत्ति, और अनुत्सेक, अनुत्सेक का इन्होंने यहाँ पर लिया है कि घमंड नहीं होना, एक्साइट नहीं होना, कोई चीज उपलब्धि हो जाए तो उस पर अभिमान नहीं करना। तो कितनी होगी बातें, दूसरे की प्रशंसा करना, आत्मनिंदा के लिए हमेशा तत्पर रहना, दूसरे के अच्छे गुणों को पकड़ करना और उनके जो असमीचीन गुण है उनको ढक लेना, पर अपने जो समीचीन गुण है उनको तो प्रकट नहीं करना, और उन्हीं जनों के सामने विनय के साथ विनम्र वृत्ति रखना, नम्र रहना, और उत्कृष्ट ज्ञानी या तपस्वी होते हुए भी उसका घमन नहीं करना। ये सब जो है उच्च गोत्र के आश्रय के कारण बनेंगे। अब जो है आखिरी में कह रहे हैं कि अंतराय कर्म के लिए आश्रय का कारण क्या है, तो कह रहे हैं विघ्न करणम अंतराय से, विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अब वो विघ्न जो है पांच प्रकार से डाला जाता है, दान में, लाभ में, भोग उपभोग और वीर में। दान देने में विघ्न करने से दानांतराय का आश्रय होता है, ये सामान्य परिभाषा है, पर अगर अपन थोड़ा और विशेष करें तो कहते हैं कि दान देने की भावना होते हुए भी दान नहीं दे पाना, ये जो है दानांतराय कर्म का लक्षण बनाया उन्होंने, दानांतराय का लक्षण बनाया, पर ये बंधेगा कैसे कर्म। तो वो कह रहे हैं कि दान देने में विघ्न डाला होगा, इसलिए दान देने की इच्छा होती हुई दान में आपके विघ्न आ रहा है, ऐसा धानांतराय की परिभाषा अलग बनेगी। धानांतराय के उदय में क्या स्थिति बनेगी कि दान देने की इच्छा होती हुई भी दान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दान अंतराय बंधा कैसे,
तो
फिर दान में
उसको बाधा डालनी,
इसलिए अपने लिए इस तरह की चीज आ रही है। इसी तरह किसी के लाभ में बाधा डाले तो अपने लिए लाभ अंतराय का आश्रय होगा, वो बंधेगा। इसी प्रकार सभी लगा रहे हैं किसी के भोग उपभोग की सामग्री में, या किसी को की शक्ति को छीन कर दिया, उसे
कर्म बंद हो जाए,
ऐसा कर्म बंद। जीव के जो है आयु कर्म के अलावा शेष सात कर्मों का आश्रय तो हमेशा होता रहता है। तब ये प्रश्न कर रहे हैं तो फिर प्रदोष आदि करने से ज्ञानावरण आदि ही कर्म का आश्रय एक क्यों कह रहे हैं आप, वो तो सभी कर्मों का होगा, हमेशा होता रहता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि प्रदोष आदि से ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों का प्रदेश बंद होता है, पर प्रदोष आदि में एक समय में जितना आश्रय होता है उसमें सात भागों में बढ़ता है, पर अनुभाग किसमें ज्यादा पड़ेगा,
मुख्यतः
जिसकी मुख्यता होगी उसमें जो है
तो पहला भाग। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है महाराज जी, तो वो क्या पूर्व भाव में ही करना पड़ती है या
उसके... ऐसा नहीं है कि पूर्व भाव में, यहाँ जो यहाँ जो भरतखंड में जो तीर्थंकर पैदा होंगे वे तो पूर्व जीवन में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वही यहाँ, क्योंकि यहाँ पंचकल्याण वाले ही तीर्थंकर होते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में जो दो या तीन कल्याण वाले होते हैं वे तो उसी जीवन में वहाँ पर, और गर्भ और जन्म के बाद, जन्म लेने तक तो उनका कुछ भी नहीं था तीर्थंकर प्रकृति, फिर उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त कर ली, बांध ली, और उसी जीवन में उदय में आ गई, तो उनका दीक्षा कल्याणक मनाया गया और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, तो तीन कल्याणक हो गए। और कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि मुनि बन गए, दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ, सामान्य रूप से जाए हाँ, तो फिर अब दीक्षा के बाद जो है मुनि बनने के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधी और उसी जीवन में उदय आ गई, तो उनके दो कल्याणक वाले तीर्थंकर हो गए। इसका मतलब है कि तीर्थंकर प्रकृति जो है पूर्व जीवन में ही बांधी जाती है और उसी जीवन में बांध करके भी उदय में आ जाए।
पर मेरा प्रश्न जरा थोड़ा सा और आगे का है कि ऐसा दो भाव पूर्व बन सकती है क्या?
नहीं,
क्योंकि जो समझ वर्ष स्वामी के बारे में मैंने
आश्रम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे छठे अध्याय में, और तुम कर्म के आश्रम का भी थोड़ा सा वर्णन पिछले उसने किया तीर्थंकर प्रकृति को के बारे में। अब यहाँ पर और विशेष रूप से उनके आश्रम का भी और साथ में संवर का भी, दोनों का वर्णन साथ में अध्याय में व्रतों के माध्यम से करना है। हिंसा व्रतस्ते ब्रह्म परिग्रह वृत्ति व्रतम, बहुत अच्छी परिभाषा इसमें उन्होंने सीधी सीधी बता बना दी कि हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, इनसे व्रत होने का नाम ही व्रत है। अब ये जो व्रत है वो दो प्रकार के हैं, देश सर्वतोल महंति, जब ये आंशिक रूप से पालन किए जाते हैं तो उनको देश व्रत कहते हैं, जब ये पूर्ण रूप से पालन किए जाते हैं तब उनको महाव्रत कहते हैं। इस तरह से इन दोनों व्रतों का, हालांकि दोनों व्रत दोनों प्रकार के भेदों में पांचों पापों का त्याग करना अनिवार्य है, लेकिन एक में स्थूल रूप से त्याग होता है, एक में स्थूल क्या सूक्ष्म रूप से त्याग होता है। अब इन व्रतों की रक्षा करना भी आवश्यक है, उसके लिए पहले ये भावना बता रहे हैं, फिर बाद में इन सबका लक्षण बताएंगे कि हिंसा क्या है, झूठ क्या है, ये बाद में बताएंगे। पहले इन पापों के त्याग करने से जो हमारे जीवन में व्रत आते हैं उन व्रतों की स्थिरता के लिए कौन कौन सी भावना आवश्यक है, इस पर पहले विचार कर रहे हैं। तो तत्स्थैर्य आत्म भावना पंच पंच, इन व्रतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। अगर अहिंसा व्रत को हमें स्थिर रखना है तो उसके लिए पांच बातें और हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वाम मनो वित्तीरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित काम भोजनानी पंच, वचन वृत्ति, मन की वृत्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये जो है पांच अहिंसा व्रत के स्थिरता के लिए भावनाएं मानी जाएगी। ये भावना रूप है, जो भी व्रत ग्रहण करेगा चाहे वो देशव्रति हो चाहे महाव्रति, महाव्रति तो इनका पुण्य करना कर्मों का पालन कर लेगा, लेकिन अनुव्रति में कम से कम इनकी भावनाएं तो भाई, क्योंकि अब उसमें चर्चा करेंगे वृत्ति और समिति की, तो वृत्ति और समिति तो गृहस्थ अवस्था में होती है, पर फिर भी वो भावना तो भा सकता है उसकी,
मैं उसे विचार ऐसे रख सकता हूँ।
वचन की प्रवृत्ति को बड़ी प्रकार से रोकना, ये वचन वृत्ति कहलाती है, और सब प्रकार के वचन का त्याग कर देना, एक उत्कृष्ट बात तो ये है, और या फिर कम से कम पाप रूप वचनों का त्याग कर देना, ये भी वचन वृत्ति है। इसी तरह मन में समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना मन के, तो वो मनोवृत्ति कहलाएगी, लेकिन दूसरी परिभाषा होती है कि मन में बुरे अशुभ विचारों का त्याग करना, ये भी मनोवृत्ति। इसी तरह से धरती पर हम जब चल रहे हैं तो चार हाथ दादी जीवों की रक्षा का भाव रखते हुए देखभाल करके चल रहे थे, वो एरिया समिति कहलाएगी, ये एरिया समिति, ये सब चीजें अहिंसा के लिए स्थिर करने के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सावधानी पूर्वक कोई भी चीज धर्म उठाए तो उसमें सावधानी रखेंगे। वो कह रहे हैं कि आधा निक्षेप समिति और अपने यहाँ पर रात्रि भोजन काल न कह के उसको आलोकित काल भोजन सूर्य की प्रकाश में भोजन चाहिए। लाइट भी आप दूसरी आर्टिफिशियल लाइट तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें आलोकित काल भोजन है। जब आलोक हो सूर्य का प्रकाश हो तब उसमें भोजन पान कर लेना वो कहलाएगा आलोकित पान। तो जो व्यक्ति आपके दिन दिन में भोजन कर लेता है उसी का अहिंसा व्रत पल पाएगा नहीं तो पूरी तरह से अहिंसा व्रत नहीं पल पाएगा उसमें कोई ना कोई दोष नहीं होगा। इसलिए इन पांच बातों का ध्यान रखना अहिंसा व्रति के लिए जरूरी है। अब सप्त व्रत के लिए भी क्या सावधानी रखनी चाहिए कौन सी भावना आनी चाहिए तो क्रोध लोग भेदभास प्रत्याख्यानुभूति की भाषण चौथा वचन क्रोध पूर्वक नहीं बोलेंगे या कि लोभवश भी हम कोई वचन नहीं बोले भय का त्याग करते हुए वचन बोले भयवश भी वचन नहीं बोलेंगे। हंसी मजाक में भी जो वचन बोले जाते हैं वे भी मिथ्या ही होते इसलिए हंसी मजाक में वचन बोलने का त्याग करेंगे और अनुभूति भाषण मतलब हित मित प्रिय वचन इस तरह से पांच बातें आवश्यक हैं जिससे कि हमारा सत्य व्रत ठीक ठीक ढंग से पालन हो सके। क्योंकि व्यक्ति जो है वो क्रोध से या लालच से या भय से या कि हंसी मजाक में ही झूठ बोलता है इसलिए कह दिया कि इन अवस्थाओं में वचन नहीं बोलना। वचन बोलेंगे तो कोई ना कोई झूठ वचन हो जाएगा तो सत्य में दूषण लग जाएगा तो उस सत्य को स्थिर रखने के लिए और फिर उनसे बचना और फिर बोलना कैसा बोलना कितने तो फिर बोलना आदर के अनुरूप बोलना वो इस तरह की पांच भावनाएं सत्य व्रत के लिए हैं। और वचौरी व्रत के लिए कौन सी भावनाएं हैं तो आगे का सूत्र कह रहे हैं शून्यकार विमोचिता वास परो क्रोधाकरण वैच शुद्धि सधर्मा विसंवाद पंच। तो बहुत मैंने विशेषता है आचार्यों की उन्होंने इतनी बारीकी से इसका वर्णन किया। चोरी जो है वो कैसे कैसे संभव है आप जहां भी रहें तो शून्यकार में रहें मतलब भगवत की गुफा है जंगल है वृक्षों का कोटर है
शून्य जैसे स्थित
हाँ जिसका कि कोई स्वामी ही नहीं वो नेचुरल उन्हें कोई भी आग्रह करके रह सकता है
जैसे शून्यकार
शून्य
इसके ऊपर किसका कोई
शून्यकार वो निर्जन है वहां कोई नहीं आग्रह करता है। और विमोचित आवास दूसरे के द्वारा जो छोड़ा गया है लेकिन उजड़ चुका हुआ है इसका खंडन पड़ा हुआ है विमोचित आवास कोई रहते हैं इसमें उसका स्वामी नहीं है तो आप चोरी के दोष से बच जाए ये बहुत सूक्ष्म हो गया। और एक और चीज है परो क्रोधाकरण जहां आप ठहरे हैं वहां अगर कोई दूसरा आके ठहरना चाहे तो उसे रोकना जबकि जहां कोई पहले से ठहरा उसे हटा करके स्वयं ठहरने की चेष्टा नहीं करना इससे जो है चोरी करने दोष लगता है इतना सूक्ष्म है। और उतने ही आगे और कह रहे हैं कि वैक्ष शुद्धि भिक्षा शुद्धि क्योंकि भिक्षा शुद्धि शास्त्रोक्त रीति से अगर शुद्ध भिक्षा लेंगे तो ही आप चोरी के दोष से बच पाएंगे नहीं तो आपने एक तरह से उस व्यक्ति को बात करके कर लिया है कि वो तो चोरी ही होगी। इसको श्रद्धा से और प्रेम से जैसी शास्त्र की विधि है उसके अनुरूप आहार ग्रहण करना ये
मेरी सब आचार्य
चोरी है और यहां पर कह रहे हैं तो अपने साधर्म्य के साथ विसंवाद नहीं करना अर्थात केवल ये मेरा है इस तरह से विश्वास नहीं करना तो वो भी जो था
चोरी
चोरी इतना सूक्ष्म
चोरी की परिभाषा बहुत ही अलग से
अब वो सिर्फ ये है कि दूसरे की संपत्ति को उससे बिना पूछे ग्रहण नहीं करना ये स्थूल रूप से चोरी की बात है पर अपने परिणाम जो है वो कहां
पे सरकार भी जैसे मरा की बात है
तो भी मेरे मेरे का जो भाव है कि एक तरह से क्या तेरा और क्या मेरा इतना सूक्ष्म रूप से विचार वो कर रहा है उसमें भी चोरी है। एक जगह ये भी आता है प्रश्न आता है उसमें कि हमारे कर्म निरंतर हमारे लिए बन रहे हैं तो वो भी एक तरह से चोरी है लेकिन वो तो सहज रूप से बन रहा है उसमें हमने किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा करके विसंवाद में तो दूसरे को कष्ट
करना अपने भाव खराब होना चाहिए ना सामने वाले को
उसके लिए भी फिर ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए कौन कौन सी भावनाएं आनी चाहिए किस चीज का ध्यान रखना चाहिए तो स्त्री राम कथम श्रवण कम मनोवराम निरीक्षण पूर्वतम स्मरण दृष्टि स्वस्थ शरीर संस्कार ज्यादा पंच पांच बातें ये भी है। स्त्रियों के विषय में राग को बढ़ाने वाली कथा न सुनना न दूसरे को सुनना क्योंकि राग उत्पन्न कर जाने वाली
देखना, उसका निरीक्षण करना, ये भी आपके ब्रह्मचर्य को धीरे धीरे दूषित कर देगा। पहले भोगने के जो भोग है उन बताना स्मरण, पहले भोगने के जो भोग है उनका स्मरण नहीं करना, जो आपको उसमें कमी आ जाएगी। इसी तरह से जो काम वासना के बढ़ने वाले वक्त हैं भ्रष्ट अरिष्ट, तो भ्रष्ट अरिष्ट अर्थात अपने लिए बहुत गलत और जो अपने लिए विभाग के लिए अच्छे मालूम करते हैं, ऐसे वासना को बढ़ाने वाले रसों का भी सेवन नहीं, क्योंकि जो चीज अपने लिए उसकी लगती है उसके साथ हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, तो फिर कमा बनेगा, कमा बनेगा तो आपकी इंद्रियां जो है वो अपने आपके वश में नहीं है। ये पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करने की बात है उनके हिसाब से, तो एक स्पर्श इंद्रियों को विचार करना नहीं है, आपके इंद्रिया देखिए आपके विचार को भी कह दिया, कान के विषय को भी कह दिया, जिन्हा के विषय को भी कह दिया, सब तरह से कह दिया।